धवला पुस्तक 10वीं लेक्चर नंबर 11 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंतारम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोहे सौवसाहूणम् कम्मठ जनिय वेयण वै समुत्तिन्नये जिनेनमिहुम् वेण महाहियारम् आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। ये षटखंडागम का ये चौथा खंड इसका नाम है वेदना खंड और उसका वेदना अनुयोग द्वारा हम देख रहे हैं इस 10वीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 65 पर आ गए 65। यहाँ वेदना द्रव्य विधान है यानी इसमें कर्मों के परमाणुओं की संख्या कितनी है उसकी चर्चा यहाँ चल रही है। हमारा ये जीव यवमध्य क्या है उसको हम देख रहे थे यानी जीव यवाकार जो रचना है। तो यहाँ पहले हमने काल यवमध्य क्या होता है उसकी बात देखी थी। उसमें द्विन्द्रिय पर्याप्त के जघन्य योग स्थान से परिणाम योग स्थान से लेकर संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त के उत्कृष्ट योग स्थान तक सभी स्थान क्रम से हम एक लाइन में दिखाएंगे सिंगल लाइन नीचे से ऊपर तक जघन्य से उत्कृष्ट और उसमें एक से दूसरा दूसरा तीसरा तीसरे से चौथा स्थान उसमें विवक्षित उतनी ही वृद्धि 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 है। तो इस तरह से ये सारे स्थान है। अब उसमें कौन से स्थान 8 समय तक लगातार पाए जाते हैं तो कहते एक दो नहीं है ऐसे जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण स्थान होते हैं उन सबको हम कहेंगे यवमध्य। अब जो 7 समय तक पाए जाते हैं लगातार ऐसे स्थान उससे भी असंख्यात गुणे हैं वो 7 वाले हैं दोनों ओर 6 वाले दोनों ओर 5 वाले दोनों ओर 4 वाले दोनों ओर। फिर जो ऊपर की जो बात है उत्कृष्ट की ओर वहाँ 3 समय वाले और 2 समय वाले भी हो गए वो भी उससे असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा होते हैं। अब जीव यवमध्य में क्या लेना है जीव यवमध्य में भी ये सारे जो योग स्थान एक लाइन में लिखेंगे हम। अब यहाँ प्रत्येक स्थान में जीव कितने उसकी चर्चा है वहां तो अनेक स्थान इकट्ठा लेकर उसको यवमध्य कहा था। अब यहाँ एक सिंगल स्थान जो है जिसमें जीव मैक्सिमम पाए जाएंगे उसको हम यहाँ यवमध्य कहेंगे। दोनों ओर जीवों की संख्या थोड़ी 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 प्रति योग स्थान थोड़ी थोड़ी घटेगी ऊपर की ओर भी घटेगी नीचे की ओर भी घटेगी। जैसे हमने संख्या मान ली बीच में 128 वाला कोई एक पर्टिकुलर योग स्थान है फिर उसमें 4 घटकर फिर 4 घटकर 4 घटकर इस तरह से नहीं पहले 16-16 घटे थे 16-16 घटे थे 4 तो गुणहानि है यानी वो 16 घटते घटते 4 के बाद वो आधा होता है उसको गुणहानि का प्रमाण 4 है क्योंकि टोटल हमने स्थान 32 माने हैं समझने के लिए और ये 32 में हम देखते हैं सेंटर वाला जो स्थान है वहाँ 128 जीव है 32 स्थान पर्टिकुलर कोई सेंटर यानी एग्जैक्ट सेंटर नहीं लेना जहाँ कहीं भी हो उसको योग यवमध्य कहेंगे जीव योग यवमध्य कहेंगे। अब हम टोटल 32 है और यहाँ एक स्थान में जीवों की संख्या 128 है तो ये जो 128 वाली संख्या है उसको 2 गुणहानि से भाग देना था यही थी ना 2 गुणहानि 8 हो जाएगी 2 क्योंकि 1 गुणहानि 4 है 2 गुणहानि 8 होती है अब ये उसका भी संख्या, उसका प्रमाण कैसे निकालना? तो टोटल गुनहानियां कितनी थी हमारे पास? नीचे तीन और ऊपर पांच, आठ गुनहानियां हैं और 32 स्थान हैं। तो एक एक गुनहानी का प्रमाण चार चार होगा, गुनहानी का आयाम चार आया। अब ये चार, एक गुनहानी का प्रमाण है चार, बीच में 128 संख्या है। अब ऊपर की ओर देखते हैं, 128 को दो गुनहानी का प्रमाण आठ, उससे भाग देंगे तो 16 28 28 80, तो 16 आएंगे। तो 128 में 16 कम करो और 16 कम करो और 16 कम करो ऊपर की ओर, तो एक गुनहानी के वहां प्रति योगस्थान संख्या कितनी जोम की उसका प्रमाण आएगा। ये 16 को यहाँ क्या कहेंगे? प्रक्षेप कहेंगे। ये प्रक्षेप भी डिफरेंट है अलग अलग। पहले गुणहानी का प्रक्षेप 16 है, नीचे की ओर भी पहले गुणहानी का प्रक्षेप 16 है, दूसरे गुणहानी का 8 होगा, तीसरे गुणहानी का 4 होगा। इस तरह से वो कौन सी गुणहानी है, कितना है, अभी हमको 128 मालूम है। तो नीचे तीन गुणहानी है, यानी तीन बार वो आधा आधा हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट पहला जो जघन्य जो योग स्थान है वहां जीवों की संख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि तीन बार आधा आधा हुआ ना। तो वहां गुणहानि का प्रमाण है चार और तीन बार आधा आधा हो गया है तो आठ हो जाते हैं। अन्योन्य अभ्यास राशि हम निकालते हैं, जितनी गुणहानि है उतने दो बार आपस में गुणा करो, उसको कहेंगे अन्योन्य अभ्यास राशि। अब इस अन्योन्य अभ्यास राशि से हमने किसको गुणा कर किया था? गुणहानि को भाग दिया था ना, गुणहानि को गुणा किया था।
हाँ, गुणहानि को गुणा किया था।
कुछ 64 पेज पर है, नहीं नहीं हमने ये नीचे की 16 संख्या किस कैसे निकाली थी? हाँ, नाना गुणहानि शला का 8 है, सब योग स्थानों का काल 32 था, जगन्य योग स्थान के जीव 16 थे। ये हमने उसको ये 62 पेज पर पढ़ा था। ये 8 से 3 गुणानियों को गुणित करने पर जो
ऊपर की ओर 5 गुणानी का होती है।
हाँ, यानी वो नीचे के पहले नीचे की संख्या हमने निकाली थी 16। अब जो वहाँ अभी 16 से शुरू करते हैं, सबसे नीचे का जघन्य स्थान है उसमें 16 जीव है, अब ऊपर की ओर बढ़ना है तो वहाँ का प्रक्षेप है चार, 16 में चार मिलाए 20 हुए, 20 में चार मिलाए 24 हुए, 28 हुए, चार मिलाए 32 हुए, तो 32 से लेकर दूसरी गुणहानि चालू हो जाएगी। पहली 16 था ना पहला निषेध, फिर 32 से ऊपर वहाँ प्रक्षेप 8-8 का हो जाएगा। अभी इन सब की चर्चा यहाँ चलने वाली है। पेज नंबर 65, यहाँ सब योग स्थानों की वर्गणाओं के लाने का विधान कहते हैं। देखो वर्गणा किसको कहना है, अभी वो हम जीव गुणहानि की बात थोड़ी अलग रखते हैं, यहाँ तो वर्ग वर्गणा किसको कहना उसकी बात है। एक योग स्थान जब कहलाता है, एक योग स्थान, तो एक एक योग स्थान में क्या है, तो आत्मा के जो प्रदेश है उसमें योग की जो शक्ति है वो अविभाग प्रतिच्छेदों में नापते हैं। तो प्रत्येक प्रदेश में पर्टिकुलर कुछ तो अविभाग प्रतिच्छेद योग के पाए जाएंगे, तो एक एक प्रदेश को एक एक वर्ग कहा। अब आत्मा के सभी प्रदेशों में जो लोक प्रमाण प्रदेश है, जो जो प्रदेश मिनिमम योग वाले हैं, उन सबको इकट्ठा एक लाइन में हम लिखेंगे, उसको कहेंगे एक वर्गणा, जघन्य वर्गणा, पहली वर्गणा, यानी जघन्य योग स्थान की जघन्य वर्गणा उसको कहेंगे। उसमें एक अविभाग अधिक वाले जो जो प्रदेश है उसको दूसरी लाइन में लिखेंगे, वो दूसरी वर्गणा, तीसरी वर्गणा, चौथी वर्गणा, ऐसी असंख्यात तक वर्गणा होती है। फिर जो पहली वर्गणा में जो अविभाग प्रतिच्छेद था वो दुगुना हो जाए, वहां से दूसरा स्पर्धक चालू हो जाता है, उसकी भी असंख्यात वर्गणा होगी। तो ये सारी एक योग स्थान में सॉरी एक स्पर्धक में जितनी वर्गना होती है ना, और फिर ऐसे एक स्वर्ग दो स्वर्ग तीन स्वर्ग जहाँ जाके प्रदेशों की संख्या आधी हो जाती है, तो वहां तक के स्पर्धक सभी स्पर्धकों का नाम मिलकर कहेंगे गुणहानी। ऐसी गुणहानी भी अनेक होती है जिसको नाना गुणहानी कहेंगे। यहाँ तक तो हमने देखा था। अब यहाँ ये जो यहाँ सब योग स्थानों की पेज नंबर 65, यहाँ एक स्पर्धक में इतनी वर्गणा होती है और एक एक पूरा योग स्थान कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक योग स्थान में इतनी नाना गुणहानी एक और एक गुणहानी में इतने स्पर्धक और एक स्पर्धक में इतनी वर्गणा, तो एक योग स्थान में वर्गणा कितनी होगी वो सबका आपस में गुणा करेंगे। एक योग स्थान में इतनी वर्गणा तो टोटल नंबर ऑफ वर्ग स्थानों में वर्गणा कितनी होगी, ये यहाँ बताने जा रहे हैं। देखो यहाँ सब योग स्थानों की वर्गणाओं के लाने का विधान कहते हुए इस प्रकार है, एक कम योग स्थान के काल को, इस नंबर ऑफ योग स्थानों को योग स्थान का काल कहते हैं, वो कितने समय योग रहता है उसकी यहाँ कोई चर्चा नहीं है। तो एक कम पेज नंबर 65 योग स्थान के काल को समस्त योग स्थान के काल से गुणित करके आधा कर, वो तो समस्त योग स्थान कितने हैं मालूम है ना, श्रेणी के असंख्यात विभाग करना, तो फिर अंगुल के असंख्यात विभाग मात्र प्रक्षेप स्पर्धक शलाकाओं से गुणित करके। प्रक्षेप स्पर्धक शलाका का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में कितनी वर्गणाएं ज्यादा होगी, प्रक्षेप स्पर्धक शलाका का अर्थ एक स्पर्धक में कितनी वर्गणा है, उसमें योग स्थान के काल से गुणित जघन्य योग स्थान की जघन्य स्पर्धक शलाकाओं का प्रक्षेप करने पर समस्त योग स्थानों की जघन्य स्पर्धक शलाकाएं होती है। ये जो उसकी जो संदृष्टि बनाएंगे तब ये बात अपने और समझ में आ जाएगी, अभी तो हम ऐसा पढ़ते हैं। पुनः उनको यानी हम सभी योग स्थानों के स्थानों में जघन्य स्पर्धक के प्रमाण से करने पर कितने होते हैं उसकी बात आएगी।
यहाँ पे एक समझ में नहीं आया, एक कम योग स्थान जो पहले सब फर्स्ट सेंटेंस है,
एक कम योग स्थान का काल यानी 32 समय अगर योग स्थान माने तो 31 लेना,
31 लेना,
31 मल्टीप्लाई बाय 32 डिवाइडेड बाय 2 उसका संकलन धन कुछ निकालना होगा शायद। अब हम आगे पढ़ते हैं, ये पूरा पढ़ेंगे फिर संदृष्टि से हम देखेंगे। देखो क्या कहा, जघन्य स्पर्धक शला, ये हमने 1, 2, 3, 4, 5 लाइन पढ़े। पुनः उनको श्रेणी के असंख्यात वे भाग मात्र एक स्पर्धक की वर्गणा शलाकाओं से गुणित करने पर समस्त वर्गणाएं आती है। देखो एक स्पर्धक की वर्गणा शलाका करते तो एक स्पर्धक में वर्गणा कितनी है, और स्पर्धक शलाका कहने से वहां डायरेक्ट एक एक योग स्थान में स्पर्धक कितने होते हैं उसकी बात की हमने, क्योंकि एक एक गुणहानि में अनेक स्पर्धक और एक एक स्पर्धक में अनेक वर्गणा, तो एक स्पर्धक में जो वर्गणा होगी तो उसके स्पर्धक वर्ग स्पर्धक की वर्गणा शलाका कहेंगे। वर्गणा शलाका एक स्पर्धक में कितनी वर्गणाएं पाई जाती है, नंबर ऑफ वर्गणा प्रत्येक स्पर्धक में उतनी होती है। यह सभी राशि श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण है। देखो योग स्थान कितने कहेंगे, श्रेणी के असंख्यात विभाग, गुणहानियां कितनी है, नाना गुणहानियां पल्ले का असंख्यात, परंतु एक एक गुणहानी में स्पर्धक कितने हैं, श्रेणी के असंख्यात विभाग, और एक एक स्पर्धक में वर्गणा कितनी है, श्रेणी के असंख्यात विभाग। तो हम कैसे निकालेंगे, अभी एक एक योग स्थान में इतने नंबर ऑफ स्पर्धक और एक एक स्पर्धक में इतनी वर्गणा है, तो एक योग स्थान में टोटल इतना तो सभी योग स्थानों में कितना, ये उसका उसकी निकालनी है संख्या।
कि सभी योग स्थान में स्पर्धक ये सभी समान होंगे
नहीं, क्योंकि देखो प्रदेश तो उतने के उतने हैं, पर जहाँ योग बढ़ेगा तो वहाँ वो उसमें वर्गणाओं की संख्या का प्रमाण अलग अलग होगा ना, उसमें वर्ग कितने होते हैं, उतने ही प्रदेशों को अभी ऐसी रचना करनी है कि उनमें से जो मिनिमम योग वाला है वो नीचे रखना है, क्योंकि उसमें ऊपर खाली ऐड करेंगे परंतु प्रदेश कहाँ से लाएंगे, ज्यादा प्रदेश उतने के उतने हैं, तो उसमें जो
यहाँ पे इसे होता है कि योगस्थान के काल से गुणित कर जगन्य योगस्थान के जगन्य स्पर्धक सलाकाओं का प्रक्षेप करने पर समस्त योगस्थानों की जगन्य स्पर्धक सलाकाएं होती है। तो अलग अलग योगस्थान के जगन्य स्पर्धक सलाकाएं अलग अलग होगी,
नंबर ऑफ उसके उसके प्रमाण से करने पर इतना लेना है उसके, क्योंकि केवल हम ऊपर नहीं, जैसे हम ये सोचते कर्मों की जो निषेक रचना करते हैं, यहाँ तो और परमाणु है तो और ऊपर भी बढ़ा सकते हैं, परंतु उनके तो केवल स्थिति है वो तो समान रहेगी, परंतु यहाँ क्या लेना है हमको, उसमें प्रदेशों की संख्या लेनी है, प्रदेशों की संख्या डिफर होगी, और वो जघन्य योग वाली जो बात है उसमें तो मिनिमम योग भी, उस योग स्थान का मिनिमम योग कितना हो सकता है, अभी थोड़ा पूरे आगे पढ़ेंगे तो देख शायद उसका पता आपको समझ में आ जाएगा। देखो यह सभी राशि हो गई, यहाँ योगस्थान का काल लाने के लिए श्रेणी का जो भागहार स्थापित किया जाए, क्योंकि योगस्थान का काल करते थे समस्त योगस्थान, तो उसके लिए जो श्रेणी को जिस संख्या से भाग दिया, क्योंकि सब में कथन क्या है, श्रेणी का संख्या का भाग, तो ये जो भागहार है वह यदि श्रेणी के प्रथम वर्गमूल प्रमाण होवे तो योग स्थानों के काल को वर्गित करने पर जगत श्रेणी उत्पन्न होती है। अभी इसका अर्थ समझेंगे, किसी भी संख्या को अभी जगत श्रेणी के बदले हम ज लिखेंगे, यानी अगर वो ज का असंख्यात्व भाग ऐसा कहा, अगर ज का कितने हैं ये जो योगस्थान टोटल इतने हैं कहा, अगर यहाँ असंख्यात का प्रमाण जगत श्रेणी का प्रथम वर्गमूल हो तो क्या होगा, देखो यदि जगत श्रेणी के प्रथम वर्गमूल प्रमाण होवे वो भागहार तो क्या प्रसंग आएगा,
समस्त योगस्थान का
तो ये उसका उत्तर क्या होगा, श्रेणी के वर्गमूल प्रमाण और इसका वर्ग करने पर जगत श्रेणी आ जाएगी, ये तो आसान है ना, जगत श्रेणी उत्पन्न होगी। अथवा यदि भागहार श्रेणी के प्रथम वर्गमूल से दुगुना होवे तो, अभी इसी ये दो गुना हो जाए तो क्या होगा, दो जगत श्रेणी, तो योग स्थान के काल को वर्गित कर चार जगत श्रेणी उत्पन्न होगी, क्योंकि यहाँ दो है ना, तो इसको दो से भाग देते हैं, देखो इसका इसका हो गया तो जगत श्रेणी आ गई, और उसका दो भाग दिया तो यहाँ चार जगत श्रेणी, चार स्क्वायर रूट जगत श्रेणी आ जाएगी, इसका वर्ग करने पर, फिर से यदि हम दो जगत श्रेणी से इसको भाग देते हैं तो जगत श्रेणी का ये भागहार की वैल्यू कितनी होगी,
जगत प्रथम वर्गमूल डिवाइडेड बाय टू
ये संख्या आएगी ना, हाँ। अब इसका वर्ग करो ये कह रहे हैं, देखो फिर पढ़ते हम, यहाँ योगस्थान का काल एक मिनट, यदि वह भागहार श्रेणी के प्रथम वर्गमूल से दुगुना होवे तो योगस्थान के काल को वर्गित कर चार से गुणा करने पर जगत श्रेणी उत्पन्न हो गई, बराबर है। और यदि वह भागहार श्रेणी के प्रथम वर्गमूल से चौगुणा होवे तो योग स्थानों के काल को वर्गित करके 16 से गुणित करने पर जगत श्रेणी उत्पन्न होगी, यानी वो दो का वर्ग चार किया, चार का वर्ग 16 किया, इस तरह से, यानी जो संख्या है उसको वर्गित करने की बात चल रही है। और यदि वह भागार, ये समझ में आती बात? फिर से कोई संख्या लेके देखते हैं जो हमको मालूम है। 256 लेते हैं, 256 को यदि हम 16 से भाग देते हैं तो 16 आ गए, या वो 32 वाली बात लेनी है, परंतु वो अभी कैसे घटित करना उसकी, ठीक है हम 16 आते हैं। अगर अभी 2 × 16 से भाग देते हैं तो क्या होगा?
16 से 8 आ जाएगा,
8 आ जाएगा। और उसके और 4 × करेंगे तो उससे भी आधा आ जाएगा। इस तरह से फिर वो जगत श्रेणी लाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसको गुणित करना पड़ेगा, ये कहना चाहते हैं। चार से गुणा करने पर जगत श्रेणी उत्पन्न होती है, कई अर्थ होते हैं उसको। वो भागहार उसका ज्यादा है तो उसको भागहार और कैंसिल करने के लिए उसका उतना गुणित करना पड़ेगा,
डबल करना।
नीचे से चौथी लाइन इस प्रकार। तो यहाँ कौन सा वाला असंख्यात लेना, ऐसा शंका हो सकती ना? श्रेणी के प्रथम वर्गमूल वाला असंख्यात लेना, के 2 × वर्गमूल लेना, के 4 × वर्गमूल लेना, के 16 × वर्गमूल लेना, कौन सा? तो कहते इस प्रकार संशय के दूर होने तक संख्यात गुणे व असंख्यात गुणे तक ले जाना चाहिए। यानी जो हमने श्रेणी के प्रथम वर्गमूल से भाग दिया उसको असंख्यात गुणा करके करने तक ले जाओ। विशेष इतना कि यहाँ योगस्थानों के काल को वर्गित कर श्रेणी के असंख्यातवे भाग से गुणित करने पर भी जगत श्रेणी नहीं उत्पन्न नहीं हुई। क्यों, क्या क्या कहा? देखो फिर से थोड़ा सोचो, हमने क्या देखा? योगस्थान कितने हैं जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग? उसमें सारी गुणहानियों के सभी स्पर्धक कितने हो गए जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग? और उसमें एक एक स्पर्धक में वर्गणा कितनी है वो भी जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग। तो इतना गुणा करने पर भी श्रेणी का असंख्यात भाग ही रहता है, क्योंकि टोटल वर्गणाएं भी इतनी है। यानी क्या कहते हैं, यदि हमने प्रथम वर्गमूल से भाग दिया होता तो उसका वर्ग करने पर जगत श्रेणी आती, या जगत श्रेणी का चौथा भाग आता तो 4 से गुणित करने। देखो हम पहले की बात फिर लेते हैं, अगर जगत श्रेणी को जो हम डिवाइड करना चाहते हैं, प्रथम वर्गमूल से गुणा किया, अब उसको 2 × प्रथम वर्गमूल से भाग दिया, 2 × प्रथम वर्गमूल से भाग दिया, तो जगत श्रेणी स्क्वेयर रूट जगत श्रेणी से भाग देने पर जगत श्रेणी का स्क्वेयर रूट जगत श्रेणी रहेगी, और ऐसा उत्तर आया। अब इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा? जगत श्रेणी ऊपर आएगी और नीचे 4 आएगी, पर इसको जगत श्रेणी प्रमाण करने के लिए उसको 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो जगत श्रेणी रह जाएगी। तो उसको 4 से गुणा करने पर जगत श्रेणी आ जाएगी, इसको वर्ग करके 4 से गुणा करने पर जगत श्रेणी, ये उसका अर्थ है। ऐसे ही लेना तो इसे बढ़ाते 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 उन्होंने असंख्यात लिया, असंख्यात जगत श्रेणिया, तो असंख्यात जगत श्रेणी से भाग देते हैं तो यही यहाँ असंख्यात आ जाएंगे, यहाँ पर भी असंख्यात आएंगे, इसका वर्ग तो जगत श्रेणी हो जाएगी और इसका वर्ग यहाँ असंख्यात का वर्ग हो जाएगा।
दो गुणा
नहीं, असंख्यात का वर्ग करना, 2 क्यों कर रहे, वो भी असंख्यात होगा, तो इसके असंख्यात से गुणा करना पड़ेगा तब जाके जगत श्रेणी आएगी। तो परंतु कितने भी गुणा करो हमारा उत्तर क्या आने वाला है, जगत श्रेणी का असंख्यात भाग आने वाला है, असंख्यात जगत श्रेणी नहीं करनी है, ये उसका कारण है। इसलिए यहाँ का जो भागहार है वो अभी डिराइव कर रहे कौन सा होना चाहिए, परंतु उसका असंख्यात भाग ही उत्पन्न हुआ, इससे जाना जाता है कि जगत श्रेणी का भागहार जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण होता हुआ भी जगत श्रेणी के प्रथम वर्गमूल को जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग से गुणित करने पर जितना लब्धावे उतना है, इसका अर्थ समझते हैं। यानी अभी हमारी क्या जगत श्रेणी को, जगत श्रेणी का भाग हार जो है उसका असंख्यातवा भाग ऐसा, जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग, परंतु वो प्रथम मूल से असंख्यात गुणा वाला ही होगा। अब उसके लिए पहले हमने बहुत पहले एक संख्या देखी थी, कोई भी, अभी हम 65,536 हमको मालूम है, उसके पहले वाली 256 वाली संख्या लेते हैं, तो उसका प्रथम वर्गमूल क्या है?
16।
अभी 256 उसका पहला वर्गमूल कौन सा है? 4 है। 256 को 4 से भाग देते हैं तो क्या होगा?
16 गुणा 4 64
का अर्थ ये प्रथम वर्गमूल को कुछ गुणा करो, अभी 2 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा?
16 गुणा 128,
यानी 16 गुणा 8। उसका अर्थ क्या है? इसका पूर्व 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 वर्ग स्थानों से भाग देंगे, इससे भाग देते तो डायरेक्ट 16 आ जाता है, उसका वर्गमूल आ जाता है, पर उसके पहले वाली संख्याओं का भाग देते चलेंगे तो प्रथम वर्गमूल को कुछ गुणा करने पर इतना होता है ऐसा। तो यहाँ जगत श्रेणी का जो असंख्यातवा भाग कहा, तो जगत श्रेणी के प्रथम वर्गमूल को कुछ असंख्यात गुणा करेंगे इतना वो उसका प्रमाण आएगा, यानी भागहार का प्रमाण जो क्या है, असंख्या जगत श्रेणियों उसका प्रमाण आएगा। यहाँ फिर से पढ़ते पहली लाइन, होता हुआ भी जगत श्रेणी के प्रथम वर्गमूल को, जगत श्रेणी के असंख्यात भाग से गुणित करने पर जितना लब्ध आवे उतना है, जघन्य योग स्थान के जीव भागहार को एक गुणहानि से गुणित करने पर योग स्थान काल का वर्ग पल्योपम के असंख्यात भाग से गुणित होकर चूंकि उत्पन्न होता है, अतः इसका त्रस्त जीव राशि में भाग देने पर श्रेणी के असंख्यात भाग मात्र जगत श्रेणिया जीव प्रक्षेप प्रमाण उत्पन्न होती है, यह सिद्ध है। यानी कितनी जगत श्रेणिया है यहाँ पर, तो श्रेणी के असंख्यात भाग मात्र जगत श्रेणिया होती है, ये यहाँ उनको सिद्ध करना है। इस प्रकार जीव प्रक्षेप प्रमाण की प्ररूपणा की, ये बात कहाँ से शुरू हुई थी? हाँ देखो देखो, ये अनंतर वाली बात वो सब सिद्ध हो जाएगी। हमने क्या देखा था? नीचे जघन्य स्थान 16 का था, अपनी संदृष्टि में देखते तो उसमें जीव प्रक्षेप कितना था? 4-4 था, 4-4 से बढ़ते बढ़ते गए, फिर आगे 8-8 हुआ, 16-16 हुआ, फिर 128 तक पहुंचे, फिर घटता गया। ऊपर की गुणहानियों में प्रक्षेप को घटाना है, नीचे की गुणहानी में नीचे से ऊपर है तो बढ़ाना, ऊपर से नीचे आते तो घटाना, इस तरह से दोनों ओर लेना, इसको ये जीव प्रक्षेप कहते हैं। अब इसमें कल हमने उदाहरण लिखा था 64 पेज पर, अभी हमने पढ़ा उसके पहले जीव प्रक्षेप किसको कहा था, देखो उदाहरण देखिए। हमने देखा था जीव गुणहानि शलाका 8 है, यानी नीचे की 3 गुणहानियां ऊपर की 5, सब योगस्थानों का काल यानी टोटल नंबर ऑफ योगस्थान 32 थे और जघन्य योगस्थान के जीव 16 थे। तो अभी इसको क्या, ये इसको श्रेणी प्ररूपणा कह रहे, ये जो सारे इतने जो सारे स्थान है उसमें प्रतिस्थान जीवों की संख्या कितनी बढ़ती या घटती है उसको यहाँ प्रक्षेप का, उसको जीव प्रक्षेप कह रहे। तो नीचे की हम देखे, नीचे का जो जघन्य योग स्थान है वो 16 है और एक गुणहानि का काल कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ योग स्थान डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ गुणहानियां, तो 32 डिवाइडेड बाय 8, 4 एक गुणहानि का काल है, वो सर्वत्र समान है, प्रक्षेप समान नहीं है, गुणहानि सर्वत्र समान है। तो अभी नीचे की पहली गुणहानि है, जघन्य से शुरू करते हैं, वहां गुणहानि है 4, तो गुणहानि को एक 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 करके विरलन करो और वहां का पजीवों का प्रमाण कितना है? 16, तो 16 को समभाग करके चारों के ऊपर दे दो, तो 4 4 4 4 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 16 आ गए। तो यहाँ जीव प्रक्षेप का प्रमाण हो जाएगा चार। तो 16 में चार ऐड करो तो 20 आए, 20 में चार करो 24 आए, 24 में चार करो 28 आए, 28 में चार करो 32 आ गए। वहां से अभी प्रक्षेप भी दुगुना हो जाएगा, वहां 8-8 ऐड करते चले जाएंगे। इसको कहेंगे ये सब प्रक्षेप, जीव प्रक्षेप। अब वो ये समझना आसान है, उनके जो जगत श्रेणी करते हो तो समझना कठिन है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 66 पर आना। अब कहते हैं अब अनंत रूप निधा के आधार से, अनंत रूप निधा का अर्थ होता है एक एक स्थिति के भेद संबंधी, जो स्थिति है योगस्थान के, जो एक एक योगस्थान के प्रति जीवों में क्या क्या है। अभी हम देखे चार चार का प्रक्षेप है, फिर 8-8 का है, फिर 16-16 का है, इसको कहेंगे अनंत रूप निधा। उसके आधार से अवस्थित भागहार रूपाधिक, नहीं रूपाधिक चाहिए, रूप अधिक यानी एक अधिक भागहार, रूपोण भागहार और छेद भागहार, धी धी अधिक साधिक लिखते ना इसे धिक। अभी हमने ये जो चार से भाग देके, यानी 16 को चार से भाग दिया, चार आ गए वगैरह जो कुछ बातें की, अब वही यहाँ समझाने जा रहे हैं। बात तो वही की वही है, प्रक्षेप बदलने वाला है परंतु नहीं है, परंतु उसको किस पद्धति से लाना है उसकी विधियां अलग अलग बता रहे हैं। देखो चार कौन से, देखे अवस्थित भागहार ने उतना का उतना भागहार हर जगह रखेंगे, वो चार का भाग हमेशा रखेंगे। रूपाधिक भागहार यानी भागहार में एक एक बढ़ते चला जाएगा, या रूपोण भागहार यानी कम करेंगे, या छेद भागहार यानी उसका कुछ हम कहते हैं एक द्वितीयांश एक चतुर्थांश जो कुछ भाग देके जो होता है उसको छेद कहते हैं, यानी उसके भागहार को किसी अन्य संख्या उसका आधा करेंगे, या तीन गुना तीसरा भाग करेंगे, चौथा भाग करेंगे, उसको छेद भागहार कहेंगे। अब इन चार भागों द्वारा योग स्थानों के जीवों को उत्पन्न कराना चाहिए। हमें तो जगन्य योग स्थान में 16 जीव है मालूम है, अब हम ये अलग अलग भागहारों के द्वारा उनकी संख्या निकालेंगे, हम ये संदृष्टि में ही समझेंगे सब। यथा प्रथमतः अवस्थित भागहार के आधार से योग स्थानों के जीवों की उत्पत्ति का कथन करने पर, जीवों की उत्पत्ति यानी प्रत्येक योग स्थान में कितने जीव है उनकी संख्या निकालनी है। उत्पत्ति ने उसके कोई जन्म से वगैरह कोई संबंध नहीं है, बस कौन से योग स्थान में कितने जीव है वो लाना है। कथन करने पर जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण एक गुणहानि का विरलन कर, अभी हमें उसकी चिंता करनी नहीं, हमारे गुणहानि का प्रमाण चार है, एक गुणहानि का प्रमाण कितना है
चार,
तो चार का विरलन कर यानी एक 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 चार बार लिखेंगे हम, हर एक जो शब्द है उनके श्रेणी है जो कुछ है अपने अपनी संदृष्टि डालेंगे तो समझना आसान होगा। तो एक्चुअली एक एक गुणहानि का आयाम कितना है, कितने स्थान है एक एक गुणहानि में, तो श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण स्थान है। तो कहते उसका विरलन कर जघन्य योग स्थान के जीवों को समभाग करके देने पर, जो अभी हमने उदाहरण देखा वही है, 16 हमारी संख्या है उसको विरलन करके दे देना है। हमने क्या देखा था, असंख्या जगत श्रेणी होती ना, एक एक योग स्थान में असंख्या जगत श्रेणी प्रमाण जीव है, अब जगत श्रेणी के असंख्यात भाग के ऊपर एक 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 विरलन किया, उसके ऊपर वो सारे को समखंड करके दे देना है। हमारी भाषा में गुणहानि का आयाम है चार, चार बार एक एक लिखेंगे, हर एक के ऊपर हमने वो 16 को समखंड करके देना है, तो चार 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 दिया, एक एक जीव प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। फिर उनमें से एक प्रक्षेप को ग्रहण कर, यानी एक प्रक्षेप की वैल्यू चार, उसको लेकर जघन्य योग स्थान के जीवों को प्रतिराशि कर, यानी जो 16 वहां लिखे हैं तो वो 16 उसको प्रतिराशि किया, उसमें प्रक्षिप्त करने पर, उसमें मिलाने पर, यानी 16 और चार द्वितीय योग स्थान के जीवों का प्रमाण होता है। दूसरे योग स्थान में जीव है 20, 16 प्लस 4 20, फिर इसको प्रतिराशि करके इसमें द्वितीय प्रक्षेप के मिलाने पर तृतीय रोग योग स्थान के जीवों का प्रमाण होता है। वो कितना होगा लक्ष्मी बहन, 24 होगा। फिर यहाँ तो वही है, आगे प्रक्षेप बढ़ेंगे नीचे से दूसरी गुणहानी में प्रक्षेप दो गुना हो जाएगा, गुणहानी तो चार की ही रहेगी। इस प्रकार विरलन राशि प्रमाण सब जीव प्रक्षेपों के प्रविष्ट होने तक ले जाना चाहिए, उस समय दुगुनी वृद्धि। यहाँ चार प्रक्षेप बनाए ना हमने, 16 को हमने चार में विरलन किया, तो पहला चार यूज किया तो 20 हो गए, दूसरा चार डाला 24 हुए, तीसरा चार डाला 28 हुए, चौथा चार डाला 32 हुए, यहाँ तक ले जाना, ये कहते दुगुने होने तक ले जाना। उस समय दुगुनी वृद्धि होती है क्योंकि 32, हाँ वो 32 से दूसरी गुणहानी चालू हो जाती है, पर 32 को लाना नीचे के प्रक्षेप से, हाँ 32 हुआ। तो जघन्य योग स्थान के जीवों के ऊपर, क्योंकि जघन्य योग स्थान के जीवों के ऊपर उतने मात्र अंकों का ही प्रवेश देखा जाता है, यानी जगत स्थान अपना जघन्य स्थान 16 था, उसमें 16 बढ़े क्योंकि हमने उसी को विरलन, गुणहानी जितनी होती है वो जगत जघन्य स्थान को उतना ही विरलन कर दिया और उतने ही फिर मिलाए तो वो डबल हो गए। फिर दुगुनी वृद्धि को प्राप्त हुए जीवों को, दुगुनी वृद्धि के प्राप्त हुए जीव कितने हैं ब्रह्मा 32। अब उनको हमारा विरलन तो उतना ही है गुणहानी का चार, अभी 32 को चार में डिवाइड करो तो प्रति एक एक के प्रति 8 8 8 8 आए, हम ऐसा लिखेंगे वहां बाजू में एक 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 और उसके माथे पर 8 8 8 8, यानी चार को विरलन किया एक 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 चार बार लिखा और हर एक के माथे 8 8 लिखे, तो ये प्रत्येक एक के प्रति दूसरे प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। विशेष इतना है कि पूर्वोक्त प्रक्षेप से यह प्रक्षेप दुगुना है क्योंकि विरलन राशि उतनी ही रखी और यहाँ जो राशि उसमें देना है डिवाइड करके वो दुगुनी हो गई, तो प्रक्षेप भी डबल आया क्योंकि जो राशि विभक्त करके विरलन राशि के प्रत्येक एक के प्रति दी गई है वह दुगुनी है। पहले हमने 16 को उसमें दी थी, अब 32 को देना है, वहाँ 4 आया था यहाँ 8 आएगा। इस प्रक्षेप को दुगुनी वृद्धि को प्राप्त हुए जीवों को, यानी 32 में इस प्रक्षेप को नहीं, इस 8 को 32 जो संख्या उसको प्रति राशि करके उसके देने पर उससे आगे के उपरीम योग स्थान के जीवों का प्रमाण होता है, यानी यहाँ दूसरी गुणहानी का दूसरा जो स्थान है वहाँ 40 हो गए, 32 प्लस 8 40 होते हैं। इसको प्रति राशि करके इसमें द्वितीय प्रक्षेप के मिलाने पर 40 में और दूसरा 8 मिलाया तो उसके आगे के उपरीम योग स्थान के जीवों का प्रमाण होता है, 48 होता है। यहाँ फिगर डालते चले जाए तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, 48 हो जाता है उपरीम योग स्थान में, 48 हो जाता है। इस प्रकार ये वो मध्य के प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए, इन्होंने यहीं पर छोड़ा, अब तीसरा 8 मिलाएंगे तो क्या होगा
48 प्लस 8
56, हाँ कितना हो जाएगा
56,
हाँ और फिर उसमें और 8 मिला
64
हो जाएगा, तो अभी 64 हो गए तो क्या करना अभी उसके बाद, अभी हम वही विरलन करना एक 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 और अभी 64 को विरलन करके देंगे तो वहाँ का प्रक्षेप 16 हो जाएगा, तो 16 16 एड करते चले जाओ तो 128 तक पहुँचेंगे हम, तो ये यानी यौ मध्य तक पहुँच गए। विशेष इतना है कि जीव प्रक्षेप प्रथम गुणहानी से लेकर ऊपर सर्वत्र प्रत्येक गुणहानी के प्रति दुगने दुगने होते जाते हैं, ऐसा यहाँ कहना चाहिए। इतनी बात समझ में आई, ये तो सरल है आज का उदाहरण ये, क्योंकि प्रक्षेप का प्रमाण लाने के लिए जो भागहार का प्रमाण कहा है वह सर्वत्र अवस्थित अर्थात एक रूप है, यानी जो गुणहानी आयाम प्रमाण हम विरलन करते हैं तो वो सर्वत्र समान है और इसी कारण से गुणहानी के काल को भी अवस्थित रूप से जानना चाहिए, यानी गुणहानी हमेशा उतनी की उतनी है सब जगह और उसमें प्रक्षेप बढ़ते चला जाएगा। विशेषार्थ अंक संदृष्टि की अपेक्षा उक्त विषय का खुलासा इस प्रकार है। गुणहानि का काल चार है, इसका एक 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 इस प्रकार विरलन करके उस पर जघन्य योगस्थान के जीव 16 को विभक्त कर चार 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 इस क्रम से स्थापित करने पर प्रत्येक विरलन के प्रति चार प्राप्त होते हैं। प्रथम प्रक्षेप का यही प्रमाण है। इसे 16 में मिलाने पर 20, यह दूसरे योग स्थान के जीवों की संख्या होती है। इसमें चार के मिलाने पर 24, यह तीसरे योग स्थान के जीवों की संख्या होती है। इस प्रकार जीवों की संख्या की दूनी वृद्धि होने तक यही क्रम जानना चाहिए। फिर गुणहानि के काल का पूर्ववित विरलन करके फिर चार का विरलन करना, उस पर अंत में प्राप्त 32 संख्या को विभक्त कर क्रम से स्थापित करना चाहिए। इससे द्वितीय प्रक्षेप का प्रमाण 8 उत्पन्न होता है। इस प्रकार यानी ऐसे ही आगे चला आगे कि गुणहानि में वो 16 हो जाएगा। यवमध्य के जीवों की संख्या 128 उत्पन्न होने तक यही क्रम जानना चाहिए। अतः यहाँ भागहार जगत श्रेणी का असंख्यात भाग अवस्थित रूप से सर्वत्र विवक्षित है। ये भागहार जो अवस्थित रूप से बताया है वो गुणहानि आयाम बताया, आयाम यानी इतने गुना इतने स्पर्धक या वर्गणाए जाने पर वो संख्या आधी होती है, उसको गुणहानि कहा उसमें। इसलिए गुणहानि का काल भी अवस्थित रूप से ही लिया गया है, क्योंकि इन दोनों का परस्पर में संबंध है। यानी वो भागार भी अवस्थित है, इसलिए गुणहानि आयाम भी अवस्थित है, ये कहना चाहते हैं। अब 68 नंबर के पेज पर आना है। अब तक यव मध्य तक पहुंचे, अभी ऊपर क्या करना पड़ेगा?
जीव की संख्या कम होती जाएगी,
कम हो जाएगी ना, तो वहाँ का प्रक्षेप निकालना पड़ेगा। कितना प्रक्षेप कम करना?
अब क्या करेंगे? 16 प्रक्षेप कम करना।
कैसे 16 निकालेंगे? अभी
128 से उसको
अभी जो है ना विरलन की राशि दोगुना करना, दोगुणहानि प्रमाण करना, क्योंकि चार ही रखेंगे और उसमें 128 दे देंगे
तो 16 हो जाएगा।
कैसे 16 आ जाएगा? 32 आ जाएगी। अब पढ़ेंगे अब 68। अब जीव यो मध्य के ऊपर के स्थान को कथन करने पर पूर्व भागहार से दुगुणे भागहार का विरलन करना चाहिए। क्या कहा? पूर्व भागहार था 4, उससे दुगुणा भागहार ने 8 का विरलन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा किए बिना यवमध्य का प्रक्षेप नहीं बन सकता। यहाँ का प्रक्षेप है वो 16 आना चाहिए, वो अन्यथा नहीं बन सकता, क्योंकि नीचे के क्या किया था हमने, जब तीसरी गुणहानि में पहुंचे थे तो वहाँ का द्रव्य यानी वो जीव की संख्या 64 थी और उसको हमने 4 में विभाजित किया था, तो वो तो 16 आ गया था। अभी ऊपर भी हमको 16 चाहिए दूसरी ओर, तो उसके लिए वो दो गुणहानि प्रमाण विरलन करना चाहिए। 8 का विरलन करो, उसमें 128 दे दो ऊपर की ओर। तो दुगुने भागहार का विरलन करने से अवस्थित भागहार की प्रतिज्ञा का विरोध होगा, सो भी नहीं है। कोई कहेंगे यहाँ तो अवस्थित भागहार बताया था, अभी आपने 4 के बदले 8 कर दिया, तो कहते नीचे की गुणहानियों का भागहार 4-4 अवस्थित है और ऊपर की गुणहानियों ऊपर की जो भागहार है वो 8-8 अवस्थित है, तो उसके साथ कोई विरोध नहीं है, क्योंकि यव मध्य के हुआ यव मध्य के चौथी लाइन अधस्तने ने नीचे के और उपरीण में ऊपर के भागों में पृथक पृथक अवस्थित रूप से दो भागहार स्वीकार किए गए हैं। ये इसका अर्थ समझ में आता है? हाँ, यानी यहाँ का भागहार 8 है, यहाँ की गुणहानि तो 4 की ही है, पर भागहार यहाँ जो प्रक्षेप लाने के लिए भागहार है ये यहाँ दुगुना है। इस प्रकार इन दो वहाँ का अवस्थित भागहार था गुणहानि आयाम प्रमाण और यहाँ का भागहार होगा दो गुणहानि प्रमाण। इस प्रकार इन दोनों भागहार का विरलन कर यानी अभी क्या करना, दोनों भागहार यानी आठ का विरलन करना पड़ेगा और उसके ऊपर 128 समभाग करके देना, तो 16 8 28 ऐसे जीव यो मध्य के देने पर प्रत्येक एक के प्रति प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। ये प्रक्षेप यहाँ का 16 होगा। ये समझ में आती बात? अभी देखो आठ बार एक
128
पहले क्या किया हमने, हमको जीवों की संख्या निकालनी है। और एक बाजू हमने सारे योग स्थान लिखे, हमने जघन्य योग स्थान में जीव कितने तो 16 लिखे, सेकंड योग स्थान में कितने तो यहाँ प्रक्षेप का प्रमाण 4 था, 4 प्लस प्लस करते गए 32 तक आए, 32 के बाद 8 प्लस प्लस करते गए 64 आए, 64 के बाद क्या ये कैसे निकालते हैं 4 या 8 या ये कैसे निकाला, तो गुणाने का प्रमाण 4 था वहाँ पर, तो हम एक 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 करके इसको उसमें डिवाइड करेंगे 16 को, तो 4 4 4 होते हैं। अगर 32 को डिवाइड करते तो 8 8 8 8 होते हैं और 64 को डिवाइड करते तो 16 16 होते हैं। वो नीचे के प्रक्षेप आ गए। अभी हमको ऊपर के प्रक्षेप निकालने, 128 के बाद वाले, अगर वहाँ पर भी 4 ही रखते हैं तो 128 को 4 में तो 32 हो जाएगा, वो नहीं, हमको 16 ही चाहिए वहाँ का, दोनों ओर 16 16 प्रक्षेप है। तो यहाँ 4 का विरलन करने के बदले हमने 8 का विरलन किया और उसके ऊपर 128 समखंड करके दे दो, तो हर एक एक के माथे पे 16 16 आ जाएंगे। देखिए हम ख्याल में ही, अभी यहाँ क्या करना है, अभी प्रक्षेप यहाँ माइनस करना है, 128 में से 16 माइनस करो, उसमें 16 माइनस करो, 4 ही बार, क्योंकि यहाँ की गुणहानि तो 4 ही है। ये ख्याल में आई बात? यानी अभी ऊपर की ऊपरी तन जो है यो मध्य के ऊपर की ओर जाएंगे तो प्रक्षेप को माइनस करते जाना। अभी 128 के बाद हम देखते हैं ऊपर, देखो पेज नंबर 1 2 है उसमें लाइन नंबर 5। इस प्रकार इन दूने भागहार का विरलन कर, पहला हमारा भागहार 4 था, अभी 2 गुना हुआ, समखंड करके जीव यो मध्य के देने पर यानी 128 उसमें देने पर प्रत्येक एक के प्रति प्रक्षेप का प्रमाण होगा, 16 आएगा। फिर यव मध्य को प्रतिराशि कर उसमें से एक प्रक्षेप के कम करने पर, पहले हम क्या करते थे, मिलाते थे, यव मध्य की ओर जा रहे थे तो मिलाते थे, अब यव मध्य से टेपरिंग करना है तो कम करना है, उसके आगे के योग स्थान के जीवों का प्रमाण होता है वो 112 आएगा, उसको प्रतिराशि कर उसमें से द्वितीय प्रक्षेप के कम करने पर उससे उपरीम योग स्थान के जीवों का प्रमाण होता है। 112 में से और 16 कम कर दिए, 96 आ जाएगी। इस प्रकार उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों का प्रमाण आने तक ले जाना चाहिए, एकदम लास्ट वाला, क्योंकि यहाँ भी विरलन उतना ही रहेगा 8 8, ये 128 से फिर आधे हुए, हाँ फिर उसमें माइनस करके 64 तक ले जाना, वहां से दूसरा फिर चालू हो जाएगा, दूसरी गुनाहानी, फिर 64 को 8 में डिवाइड करो तो 8 8 64 8 आएगा, फिर वो 32 तक ले जाना माइनस करते करते, 32 को 8 में डिवाइड करो 4 4 आएगा, फिर 32 के बाद 16 हो जाएगा, जैसे नीचे 16 से शुरू किया था ऊपर 3 गुनाहानी में 16 आ जाएगा, 16 के बाद फिर वो 16 को 8 में दे तो 2 2 आ जाएगा, और फिर 8 को 8 में दे दो तो 1 1 आ जाएगा, लास्ट में वहाँ 1 1 का डिफरेंस होगा। वो 250 पेज पर कल हमने देखी थी ना, निकाल कर्म कांड इसमें भी है 76 पेज, देखो जो लेफ्ट साइड में वो नीचे के अधस्तन है और राइट साइड में ये ऊपरी तन है, यानी 16 से 28 तक गए, फिर 32 से 56 तक गए, 64 से 112 तक गए थे, 112 के बाद 128 यो मध्य आया था, उसके बाद
प्रक्षिप्त बल होता
है। हाँ, 80 तक तो उसकी गुनाह नहीं है, पर 64 तक हमने कैलकुलेशन किया इस तरह से। वो उसका कैलकुलेशन कैसे करना वो आगे आएगी बात। अभी तक यहाँ तक जो पढ़ा वो समझ में आया कि नहीं? वो अभी यानी भागहार कायम रखते हुए ये प्रक्षेप कैसे निकालना ये हमने यहाँ देखा। उन्होंने भागहार चार पद्धति से बताए हैं। एक तो ये फिक्स अवस्थित भागहार, एक एक बढ़ाते हुए भागहार भी बताएंगे, एक एक कम करते हुए भी भागहार, और उसका कुछ अपूर्णांक रूप से भी भागहार देखेंगे। अब आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट योग स्थान के योग का प्रमाण आने तक ले जाना चाहिए। हमें एक एक जीव स्थान के प्रति संख्या निकालनी है वो यहाँ बताई उन्होंने। अब इसी का विशेषार्थ, पहले जो क्रम बतलाए हैं उससे जीव योग मध्य के आगे का क्रम बदल जाता है। ये नीचे का क्रम और आगे का ऊपर का क्रम अलग है। यहाँ भागहार का प्रमाण पूर्व की अपेक्षा दूना हो जाता है, ये यहाँ की विशेषता है। और आप कहेंगे अवस्थित भागार है, हाँ यहाँ के आगे सभी गुणानियों में वही अवस्थित भागार रहेगा। जीव यौ मध्य के पहले प्रत्येक योग स्थान के जीवों का प्रमाण लाने के लिए भागार का प्रमाण जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण बतलाए थे, किंतु यहाँ वह दूना हो जाता है, यानी गुणानी के दो गुना हो जाता है। अन्यथा यवमध्य के जीवों के आधार से आगे के प्रक्षेप का प्रमाण नहीं लाया जा सकता। इस पर यह शंका होती है कि जब सर्वत्र अवस्थित भागार स्वीकार किया गया है, तब फिर यह उसे दुना कैसे किया जा सकता है। इस शंका का जो समाधान है उसका भाव यह है कि जीव यवमध्य से पूर्व की गुणहानियों में सर्वत्र एक भागहार स्वीकार किया गया है और आगे की गुणहानियों में दूसरा भागहार स्वीकार किया गया है, इसलिए भागहार को अवस्थित मानने में कोई बाधा नहीं आती। अगर वो नीचे से ऊपर बढ़ते जाने हैं तो अलग भागहार है और वहां से घटते हुआ वो अलग भागहार है। फिर भी यहाँ इतना विशेष समझना चाहिए कि यवमध्य में सबसे अधिक जीव होते हैं, इसलिए यवमध्य के आगे की गुणहानियों में सर्वत्र प्रक्षेप को घटाते जाना चाहिए। ये विशेषता है। प्रक्षेप का अर्थ उसमें मिलाना, परंतु एक्चुअली उसको चय के टाइप में उसको ले लेना यहाँ पर, और प्रत्येक गुणहानि में उसे आधा आधा करता जाना चाहिए। इस प्रकार उत्कृष्ट योग स्थान के जीवन का प्रमाण आने तक यह क्रम जानना चाहिए। इसका अर्थ समझ में आया? जिसे हमने देखा ना उत्कृष्ट तक, यानी वो तो अंतिम जो संख्या देखी थी हमने अभी 76 पेज पर अभी देखा ना आपने, पांच संख्या आने तक ले जाना चाहिए, क्योंकि 128 के बाद वो 16-16 था, फिर आगे बढ़कर वो 8-8 होगा, फिर 4-4 होगा, 2-2 होगा, फिर 1-1 होगा। अब 69 पेज पर आते हैं। अथवा अब देखो भागहार बदल गया है, अथवा दो गुणहानियों का विरलन कर यवमध्य को समखंड करके देने पर प्रत्येक एक के प्रति यवमध्य जीव प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। ये यवमध्य का जीव का प्रक्षेप यहाँ मिलता है। यवमध्य से शुरू करेंगे, हाँ यानी अभी दो गुणहानियों के ने 8 का विरलन करके यवमध्य को 128 को समखंड करके देने पर प्रत्येक एक के प्रति यवमध्य जीव प्रक्षेप का प्रमाण आता है। फिर यवमध्य को प्रतिराशि करके पार्श्व में स्थित दो योग स्थानों के जीवों की अपेक्षा दो यवमध्यों में से विरलना के प्रथम प्रक्षेप को कम करने पर यवमध्य के दोनों पार्श्व भागों में स्थित प्रथम योग स्थानों के जीवों का प्रमाण होता है। देखो यहाँ क्या कहना, अभी हमने सेंटर से शुरू किया, 128 से शुरू किया, अब क्या करना, यव मध्य का प्रक्षेप कैसा निकालना, यहाँ का
दो गुणहानियों का,
दो गुणहानियों का विरलन करो एक आठ में, और उसके ऊपर 128 समखंड करके दे दो तो 16-16 आ गए। अब ये 16 का प्रक्षेप है, यहाँ से नीचे की ओर 16 कम कर दो, आठ का विरलन किया, नहीं 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 128 को समखंड कर 16 लिखे, यहाँ 16 लिखे। अभी क्या करना, इसमें से 16 कम कर दो इधर लिख दो, और इसमें से 16 कम कर दो इधर लिख दो, 112 वही लिख रहा है, यहाँ लिख रहा दो योग स्थानों के जीवन की अपेक्षा दो यव मध्यों में से विरलना के प्रथम प्रक्षेप को कम करने पर यव मध्य के दोनों पार्श्व भागों में स्थित प्रथम योग स्थानों के जीवन का प्रमाण आता है। इसका अर्थ समझ में आया, 112 आता है। देखो देखो आपको अंक डालना है ना, पहली लाइन में लिखा दो गुणहानियों के बदले आठ लिखा, उसके ऊपर बदले ने उसके ऊपर यव मध्य को समखंड ने 128 आए, प्रत्येक एक के प्रति यव मध्य जीव प्रक्षेप का प्रमाण 16 आता है, फिर यव मध्य को प्रतिराशि करके यानी 128 को प्रतिराशि करके पार्श्व में स्थित दो योग स्थान यानी ऊपर का और नीचे का, ऊपर का
16 कम कर
डैश नीचे का, ये दो योग स्थानों के जीवों की अपेक्षा दो यव मध्यों में से विरलना के प्रथम प्रक्षेप को कम करने पर यव मध्य के दोनों पार्श्व भागों में स्थित प्रथम योग स्थानों के जीवों का प्रमाण होता है, दोनों ओर 16-16 कम कर देना
112।
दो 65 जो मज्जेसु विरलनाए परम पक्षे वणि दे, हाँ दोनों ओर का है, फिर उन दोनों को ही प्रतिराशि करके, अब किसको प्रतिराशि किया 112 को, उभय राशियों में से द्वितीय प्रक्षेप को कम करने पर, दूसरा प्रक्षेप भी आठ है, यव मध्य के दोनों पार्श्वों में स्थित द्वितीय योग स्थान के जीवों का प्रमाण 128 से उसको गिनना है, यानी सेंटर का एक नंबर देंगे तो यहाँ दो लिए, यहाँ दो आया, यहाँ तीन आया, यहाँ तीन आया, इस तरह से गिनना है उनको, तो 112 में से 16 और कम कर दो, ये दोनों और 96-96 हो जाएंगे, हाँ दोनों द्वितीय योग स्थान के जीवों का प्रमाण 96-96 आएगा। इस प्रकार विरलन राशि के अर्ध भाग के क्षीण होने तक जाना चाहिए, विरलन राशि उसको कम कर दिए, दोनों ओर कम कर दिए, है ना,
विरलन राशि आठ है उसका,
आठ है उसमें चार निकल गए, चार बार हमने यहाँ दोनों ओर घटाया उसको,
एक गुणानी खत्म हो गई,
हाँ आधे होने तक चले जाने बताए ना उन्होंने, राशि यहाँ लिखा ना
विरल राशि के अर्ध भाग के क्षीण होने,
इस प्रकार विरल राशि के अर्ध भाग के क्षीण होने तक ले जाना चाहिए, एक बार दो बार तीन बार चार बार, यानी 64-64 दोनों बाजू हो जाएंगे, यहाँ तक समझ में आए। तत्पश्चात विरलन राशि के शेष अंकों पर स्थित राशि को आधा करके अनाहेय अंकों को परिपाटी से देने पर यव मध्य की अपेक्षा द्वितीय गुणहानि का प्रक्षेप होता है। देखो क्या कहते हैं, अभी चार रह गए थे और हर एक के ऊपर 16-16 थे, अभी क्या करा उसको, उसके आठ आठ किए, अभी उसके आठ आठ में डिवाइड कर दिया, और इसके आगे आठ आठ कम करेंगे, एक दो तीन चार बार आठ आठ कम करेंगे, यहाँ पर भी आठ आठ कम करे, कब तक, 32 आने तक, फिर पढ़ती हूँ, अर्धभाग के क्षीण होने तक ले जाना चाहिए। तत्पश्चात विरलन राशि के शेष अंकों पर स्थित राशि को आधा करके, अभी शेष अंक चार रहे थे, अभी उसको आधा करके, ये पूरी राशि 64 थी ना, उसको आधा करके यानी उसमें से 32 यूज करना है और 32 को चार में डिवाइड करके इन्हें आठ आठ करके, स्थित राशि 64 थी, आधा करके 32 हो गई। अना ही अंकों को परिपाटी से देने पर यवमध्य की अपेक्षा द्वितीय गुणहानि का प्रक्षेप होता है वो 8 होगा, क्योंकि 32 को 8 में 4 में विरलन करना है, विरलन में डिवाइड करना है, क्योंकि यह पूर्वोक्त प्रक्षेप से आधा है। फिर इन प्रक्षेपों को पहले के समान दूसरी गुणहानि के अंतिम निषेक के प्राप्त होने तक घटाते हुए ले जाना चाहिए। इस प्रकार जानकर दोनों ही पार्श्व भागों में जघन्य योग स्थान के जीवों का प्रमाण प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए, फिर नीचे नहीं ले जा सकता क्योंकि उससे आगे द्विन्द्रिय पर्याप्त के योग स्थान नहीं पाए जाते, किंतु ऊपर पूर्व के समान अधस्तन गुणहानियों के असंख्यात वे भाग मात्र असंख्यात गुणहानियों को, क्या कहा, नीचे तीन गुणहानियां थी
ऊपर
और ऊपर पांच है, तो तीन तक तो दोनों ओर समान दिए, अब तीन के तीन से नीचे कोई दूसरी गुणहानियां नहीं है तो ऊपर और कितनी रह गई है, तो कहते कि वहां पे वहां दो है, परंतु कहते वो तो नीचे के गुणहानियों के असंख्यात वे भाग मात्र गुणहानियां ऊपर और शेष रह गई। वो भी असंख्यात है, उन गुणहानियों को उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों का प्रमाण प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। यहाँ हमारे इसमें तो दो है, तो वहां तक हमने इसे प्रक्षेप आधा करते करते वहां तक ले गए। इस प्रकार करने पर यवमध्य के दोनों ही पार्श्व भागों में एक अवस्थित भागहार सिद्ध होता है, उतना का उतना ही वो भागहार उन्होंने सिद्ध करना था, इसलिए ये सब लंबा। नहीं, फिर से कौन सी लाइन ऊपर से, अच्छा आप में क्या है, ले जाना चाहिए। विरलन राशि कितनी थी, 128 थी, अभी वो विरलन यानी विरलन राशि नीचे 8 थी, उसमें से इसमें से 4 हमने यूज किया, दोनों ओर वापरे, अभी 4 के ऊपर कितनी शेष रही राशि है, हर एक के ऊपर 16-16 थे, नहीं 16 को 8 करना है, उसके आधी करना है,
वो आगे 8 करेंगे, 32 के लिए 8 करेंगे ना, 32 का
समखंड करेंगे, देखो नहीं देखो अभी हमने कहां तक ले गए, 64 आने तक ले गए, द्वितीय योग स्थान को प्रमाण आता है, इस प्रकार विरलन राशि के अर्धभाग के क्षीण होने तक ले जाना चाहिए। विरलन राशि हमने कितनी थी, 16-16-16 8 बार लिखी थी, उसमें से 4 बार हमने यूज कर दी, तो और 4 बार की विरलन राशि शेष है, तो विरलन राशि 64 शेष है। अब
64 को 8 पे वापस डिवाइड कर रहे हैं,
हाँ,
और 4 बार लेके जाना है वापस, जो राशि बचेगी हाँ,
उसको भी आधा करना है, यानी भागहार उतना ही रखना है हमको 8, अभी 64 को 8 में डिवाइड करो तो 8 8 आ जाएंगे, पहले 16 था प्रक्षेप, अभी 8 आ गया, हाँ क्योंकि फिक्स भागहार रखना है ना। देखो वो विरलन राशि कितनी रही, 64, और आधा
64 को 8 पे डिवाइड किया तो 8 8 8 आ गया,
हाँ, शेष राशि के अंकों पर स्थित राशि को आधा करके अनाहेय अंकों को परिपाटी से देने पर यवमध्य की अपेक्षा द्वितीय गुणहानि का प्रक्षेप 8 प्राप्त होता है। इन प्रक्षेप आधा आधा होता है, इसका अर्थ होता है। ऐसे अंत तक ले जाना। नीचे तो हम 16 आने तक नीचे जाएंगे और ऊपर तो हमको 5 आने तक जाना है, इस तरह से। यानी उनको दोनों ही पार्श्व भागों में अवस्थित भागधार है वही इतना सिद्ध करना है। देखो पहले हमने ये हमारा भागार हमने 2 गुना यानी 8 किया, पहले उसमें 128 दिए, उसमें से 4 यूज किए तो 16 संख्या बाकी रही, फिर 8 भागार में 16 वो 64
को डिवाइड किया
तो हरेक के ऊपर 8 आ गए। 4 बार 8 यूज किए फिर 32 रह गए, 32 को फिर 8 में डिवाइड कर दो तो 4 आ गए, उसमें से 4 बार के यूज कर दिए।
अवस्थित भागार प्रूव करना था इसीलिए उन्होंने अलग,
हाँ वो भागार हमको 8 का 8 रखना है, उसके लिए उल्टा पुल्टा। या उन पर स्थित जो शेष अंगों पर स्थित राशि 16 थी उसको 8 करके 8 में दे देना।
गुणनीय क्रम कटाते जाना।
तो ये अवस्थित भागार कैसे सिद्ध होगा वो 2 पद्धति से उन्होंने बताया। एक तो नीचे का अवस्थित भागार 4 लिया, ऊपर का 8 लिया, या दोनों ओर समान भागार लेके भी उन्होंने वही बात सिद्ध की। अब 70 नंबर के पृष्ठ पर आते हैं, यही फिर विशेषार्थ में बता रहे हैं। पहले ये वो मध्य से पूर्व की यानी नीचे की गुणहानियों में प्रारंभ से प्रत्येक योग स्थान के जीवों में योगस्थान के जीवों की संख्या में प्रक्षेप को जोड़ते हुए यव मध्य तक के जीवों की संख्या उत्पन्न करके बतलाई गई थी और यव मध्य से आगे सर्वत्र प्रक्षेप को घटाने की प्रक्रिया के निर्देश द्वारा उत्कृष्ट योगस्थान तक के जीवों की संख्या निकालकर बतलाई गई थी, किंतु यहाँ यव मध्य से दोनों ओर प्रक्षेप को घटाते हुए अभी यहाँ जो अथवा कह के जो बताया है किस प्रकार प्रत्येक योग स्थान के जीवों की संख्या आती है इस विधि का निर्देश किया गया। पद्धति अलग अलग बता गई कैसे ला सकते हैं उसको। प्रारंभ है, प्रारंभ में यहाँ 2 गुणहानियों के काल का विरलन कराकर यव मध्य के जीवों को सम विभक्त कर दिया गया। 2 गुणहानियों का काल ने 8, उसमें 128 सम विभक्त कर दिया, जो अभी हमने उसमें सभी डाले थे संख्या, और एक विरलन के प्रति जितनी संख्या प्राप्त हो 16 ही थी, उतनी संख्या दोनों ओर क्रमशः घटाई गई है, किंतु यह क्रम आधे विरलनों को समाप्त होने तक ही चालू रखा गया है। आगे प्रत्येक गुणहानि में प्रक्षेप का प्रमाण आधा आधा होता गया है और इस प्रकार दोनों ओर गुणहानि के अनुसार प्रत्येक योग स्थान के जीवों की संख्या लाई गई। उन्होंने शॉर्ट में बताया है परंतु भागार उतना ही रखते हुए जो ऊपर की संख्या वो आधी आधी करके उसमें बांट देना है, यानी 4 के ऊपर 16 बाकी रहते, अब विरलना फिर 8 कर दो और वो 16 में से 8 उसमें सब जगह 8 कर दो, फिर 4 उसमें से यूज हो जाएंगे, फिर जो बचेंगे वो फिर 8 में डिवाइड कर दो, इस तरह से ये चलेगा। भागार 8 का 8 रखा हमने। आगे प्रत्येक गुणाने में प्रक्षेप का हो गया, यह सब इसलिए किया गया क्योंकि इसमें भागार का प्रमाण नहीं बदलता है। तो ये अवस्थित भागार की प्ररूपना कर दी उन्हें। ये पेज नंबर जो अभी हमने देखा था पेज नंबर 66 पर नीचे के पैराग्राफ में लिखा था, ये सारा क्यों लेना है, प्रत्येक योगस्थान में जीवों की संख्या लाने के लिए। तो वहां नीचे के पैराग्राफ में क्या लिखा था, अनंत रूप निधान, एक एक योग स्थान के प्रति जीवों का कितने अधिक अधिक है कितने कम कम है वो लाने के लिए पहले हमने अवस्थित भागार के 2 कथन देख लिए। ये समझ में आई, पेज नंबर 66 में लिखा था, 66 नीचे का पैराग्राफ 66 कौन से लिया आपने, 66 पेज है।
नहीं आपने दो पैराग्राफ दिए हैं।
66 कौन सा नंबर है पेज?
हाँ दे देता है यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ कैसा लिखा है।
तो उसमें अवस्थित भागार लिखा ना, वो अभी हमने दो पद्धति से देखा, अब रूपाधिक भागार समझाएंगे। हाँ चार के बदले 5, 6, 7 ऐसे करते करते देखेंगे। जानकर कुछ नहीं, अपना उपयोग उसमें हाँ सूक्ष्म होता रहे। इसलिए जीवों की संख्या यानी एक एक स्थान के प्रति जीवों की संख्या कैसे घटित करनी है वो बता रहे। अब रूपाधिक भागार के आधार से अनंत रूप निधा का कथन करते। यहाँ पर भी हमारी संख्या डालेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। गुणहानी के काल का यानी 4 का जघन्य योगस्थान के जीवों में यानी 16 में भाग देने पर प्रक्षेप प्राप्त होता है 4। उसके ऊपर माथे पर डालते संख्या, उसे प्रतिराशि रूप स्थित जघन्य योग स्थान के जीवों में मिलाने पर यानी 16+4 इज इक्वल टू द्वितीय स्थान के जीव होते हैं यानी 20 होते हैं। ये तो सरल है जो पहले हमने लाया था। पुनः एक अधिक पूर्व भागहार से, पूर्व भागहार हमारा 4 था, उसमें 1 मिला दो 5 आ गए। द्वितीय स्थान के जीवों को भाजित करके यानी 20/5 है
4 आ गए,
उसमें एक खंड को यानी 4 को उसी दूसरे स्थान की राशि को ही दूसरी राशि बनाकर उसमें मिला देने पर यानी 20 में वो 4 मिलाना यानी हमने एक ही बार 16 को भाग दिया था और 4, 4, 4, 4 हर बार मिलाए थे। अब यहाँ वही संख्या आने वाली है, पहले 16 को 4 से भाग दिया 20 आया, 20 को 5 से भाग दिया 24 आए, 24 को 4 से भाग दिया,
24 को 6 से भाग,
5 से भाग दिया 4+1 संख्या 4 ही आने वाली है, फिर 24 हो गए, 24 को 5+1 6 से भाग दिए तो भी प्रक्षेप तो 4 ही आने वाला है। इस तरह से समझ में आते हैं बस। देखो ऊपर से उस पैराग्राफ की 1, 2, 3, 4, 5 छठी लाइन देखो, एक अधिक अनंत अधस्तन भागार से 5+1 6 वाला भाग आया, इस दूसरे स्थान की राशि को खंडित कर जो प्राप्त हो यानी 24/6 प्राप्त तो वही होने वाला है 4, उसे प्रतिराशि रूप से स्थापित तीसरे स्थान के जीवों में मिला देने पर चतुर्थ स्थान के जीवों का प्रमाण आता है 28 आ गए,
28 आ गए।
ब्रह्मा समझ में आती बात? आप नीचे ऊपर कुछ हो गया आपका, आपने कहाँ तक लिखा? राशि को ही दूसरी राशि बनाकर उसमें मिला देने पर तृतीय स्थान के जीवों का यानी 24 आया। अभी भागहार में एक मिला दो ने 5+1 6 हो जाएगा, इस दूसरे स्थान की राशि को खंडित कर यानी 24 को 6 से भाग दिया तो 4 आ गए। इतने ऊपर कहाँ गए आप? चतुर्थ स्थान के जीवों का नीचे से तीसरी लाइन है पैराग्राफ की, चतुर्थ स्थान के वो 28 आ गए, 28 जीव आ गए क्योंकि 16, 20, 24 और 28 इस प्रकार प्रथम स्थान से दुगुनी वृद्धि होने तक ले जाना चाहिए, 32 तक ले जाना चाहिए यानी अभी 28/7 करना है तो 4 ही आ गए, वो उसमें मिला देना तो 32 आने। यहाँ तक समझ में? हाँ वो तो पहले बताया ना पद्धति, अभी ये रूपादि भागार बढ़ाते हुए संख्या बता रहे,
एक पद्धति समझ दो तो
ये कैसे कैसे निकल सकते हैं, उनकी बुद्धि देखो इस प्रकार। हाँ आंसर देके फिर बाद में डिराइव किया। हाँ ये इसे फॉर्मूले के रूप में बता देना इतने और ये असंख्या तक ऐसा चले
जाए। आज तो दाना फिगर से मोटा फिगर में आंसर जो न खबर पड़े, मतलब जगत शरीर ने असंख्या से भाग प्रमाण बत्तू बत्तू जाए,
यानी मूल में बताए है ना ये। इस प्रकार यव मध्य की अधस्तन सब गुणहानियों का अलग अलग एक एक गुणहानि के प्रति एक अधिक के क्रम से भागहार कहना चाहिए। समझ में नहीं ये बात, शंका। रूपाधिक भागहार के लिए अपनी गुणहानि का नियम कैसे है? समाधान, क्योंकि प्रत्येक गुणहानि के प्रक्षेप एक समान नहीं है। ओरिजिनल जो प्रक्षेप है वो तो हाँ वो एक समान लेना पड़ेगा ना, वहाँ आठ लिया मान ले, अभी वहाँ प्रक्षेप भी डबल हो जाता है, नीचे सोलह में चार चार मिला है तो ऊपर आठ आठ मिलाना है। इसलिए रूपाधिक भागार के लिए अपनी गुणहानि का नियम बनता है, अपनी अपनी गुणहानि में वो नियम है, दूसरी गुणहानि में आठ प्लस नौ प्लस दस प्लस इस तरह से चला जाएगा। ख्याल में? इसी प्रकार आगे भी कहना चाहिए, विशेष इतना है कि उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों को एक अधिक गुणहानि से खंडित करके जो लब्धा आवे उसे प्रतिराशि रूप से स्थापित उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों में मिलाने पर द्विचरम योग स्थान के जीवों का प्रमाण होता है, ऐसा कहना चाहिए। उल्टा आना है, ऊपर के जीव पांच थे, देखो उत्कृष्ट योग स्थान के जीव पांच थे, उसको एक अधिक गुणहानि से खंडित करना है, यानी पांच से ही खंडित करना है। हमने जघन्य स्थान को चार से खंडित किया था, और पहला प्रक्षेप चार का था, फिर वो भागहार बढ़ाते गए, एक आया ना, पांच डिवाइडेड है पांच, एक आया तो एक एक मिलाते चले जाओ, जो लब्धा एक है उसे प्रतिराशि रूप से स्थापित उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों में मिलाने पर पांच प्लस एक छह हो जाएगा। अभी छह को छह से भाग दो, क्योंकि वो अंतिम गुणहानि में एक एक ही प्रक्षेप है। द्विचरम योग स्थान के जीवों का प्रमाण होता है, ऐसा कहना चाहिए। ये समझ में है? छह डिवाइडेड बाय छह एक आया, वो छह में मिला सात, फिर सात डिवाइडेड बाय सात भागहार बढ़ा दिया, आठ आया, आठ डिवाइडेड बाय आठ एक आया, उसमें इस तरह से पांच छह सात आठ, फिर वो दुगुना हो जाएगा, प्रक्षेप भी दुगुना हो जाएगा। हाँ सेम है बात, परंतु अंकों की बात है ये। देखो यहाँ विशेषार्थ, रूपाधिक भागहार के क्रम से प्रत्येक योग स्थान के जीवों की संख्या लाई गई है। सर्वप्रथम गुणहानि के काल का यानी चार का, जघन्य योग स्थान के जीवों की संख्या में भाग देकर यानी चार का सोलह में भाग देने पर प्रथम प्रक्षेप प्राप्त किया है वो चार आता है। इसे जघन्य योग स्थान के जीवों की संख्या में मिलाकर बीस आ गए ना, दूसरे स्थान के जीवों की संख्या प्राप्त हो गई बीस आ गई, फिर इस प्रक्षेप में एक मिलाकर उसका भाग दूसरे स्थान के जीवों की संख्या में देकर दूसरा प्रक्षेप भाग प्राप्त किया जाता है, और उसे दूसरे स्थान के जीवों की संख्या में मिलाकर तीसरे स्थान की संख्या प्राप्त की गई है। उदाहरणार्थ गुणहानि के काल चार का जघन्य योग स्थान के जीवों की संख्या सोलह में भाग देने पर चार लब्ध आते हैं, अतः यह प्रथम प्रक्षेप हुआ। इसे जघन्य योग स्थान के जीवों की संख्या सोलह में मिला देने पर दूसरे योग स्थान के जीवों की संख्या बीस होती है, फिर पूर्व प्रक्षेप चार में एक मिलाकर पांच का बीस में भाग देना चाहिए। इस प्रकार जो पुनः चार लब्ध आवे उसे दूसरे योग स्थान के जीवों की संख्या 20 में मिला देने पर तीसरे योग स्थान के जीवों की संख्या 24 होती है। इस प्रकार यह क्रम सर्वत्र जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यवमध्य के आगे पूर्व के समान वहां के अनुरूप प्रक्षेप प्राप्त करके घटाते जाना चाहिए, किंतु अंतिम गुणहानी में अंतिम स्थान से पीछे की तरफ प्रक्षेप का निक्षेप करते हुए लौटना चाहिए। मैंने ऊपर से नीचे क्यों नहीं, वो तो अंतिम से उपांत फिर इस तरह से उल्टा क्रम बताना। हाँ, वहाँ अंत के स्थान के जीवों की जो संख्या हो, 5 थी ना यहाँ पर, उसमें 1 अधिक गुणहानि के काल का भाग देने पर 4 अधिक 1 5 का भाग दिया, प्रक्षेप प्राप्त करना चाहिए। 5 / 5 = 1 और उसे मिलाते हुए गुणहानि के प्रथम स्थान तक आना चाहिए। उदाहरणार्थ अंतिम गुणहानि के अंतिम स्थान के जीवों की संख्या 5 है, इसमें 1 अधिक गुणहानि के काल अर्थात 5 का भाग देकर 1 संख्या प्रमाण प्रक्षेप प्राप्त होता है। इसे अंतिम स्थान के जीवों की संख्या में मिला देने पर द्विचरम योग स्थान के जीवों की संख्या होती है। इसी प्रकार आगे भी एक एक मिलाते जाना चाहिए। यहाँ सर्वत्र पूर्व प्रक्षेप में एक एक बढ़ाकर उसके भाग द्वारा नया प्रक्षेप प्राप्त होता है, इसलिए इसे रूपाधिक भागार कहा गया है। यानी प्रक्षेप में बढ़ाकर कैसा कहा, इसमें प्रक्षेप में कहाँ बढ़ा रहे हैं हम, भागार में बढ़ा रहे हैं। ये प्रक्षेप में मिलाते ही रहते, प्रक्षेप तो सर्वत्र सेम है, क्योंकि प्रक्षेप अगर 1 है इसमें मिलाए तो 2 हो जाएंगे, और भागहार 5 था उसमें 1 मिलाने में 6 हो जाएंगे। प्रक्षेप में मिलाकर कह रहे ना, वो मुझे खटक रहा है। भागहार बढ़ाना चाहिए। प्रक्षेप में मिलाकर वहां तो 4 में 4 वो तो घटित हुआ, क्योंकि भागहार भी 4 था और प्रक्षेप भी 4 था, वहां तो घटित हुआ, परंतु यहाँ भागहार में 1-1 बढ़ाना चाहिए, ये कहना चाहते हैं।
तो उत्कृष्ट योग स्थान में जो अंतिम जो जीवों की संख्या है उसमें हम लोग प्रक्षेप कितना करेंगे, पल्यक या संख्या के बाद प्रमाण प्लस 1 नहीं, सॉरी अच्छा वहाँ पे स्पर्धकों की संख्या भी जगत श्रेणी का संख्या के बाद है, उसको
उल्टा हमने घटित किया था ना।
हाँ नहीं, प्रक्षेप का प्रमाण मैं सोच रहा था जो उत्कृष्ट योग स्थान
बताए ना, वहाँ पर 1+ गुणहानि, गुणहानि कितनी है,
श्रेणी का संख्या।
हाँ, तो श्रेणी की संख्या तो भाग में 1 मिला दो और उससे उसको भाग दो।
गुणहानि का प्रक्षेप करे कायम दिखा,
किसमें भाग देना है, यहाँ 5 संख्या लिखी है। हमने क्या देखा था, हर जगह कितने जीव है, असंख्या जगत श्रेणी है, असंख्या जगत श्रेणी डिवाइडेड बाय श्रेणी का असंख्या का भाग प्लस 1
नहीं, नाना गुणादि में चला गया, नाना गुणी गुणादि का प्रमाण पल्य का संख्या।
अभी ये संख्या याद रखो ना, उसकी बात छोड़ दो, इसमें समझ में आता है उतना समझो। ये प्रक्षेप में देख रहे हैं, वो तो भागहार में बढ़ाना है, प्रक्षेप में ही नहीं बढ़ाना। जहाँ 4 प्रक्षेप और 4 भाग है उसमें तो ये कथन हो जाता है, भागहार में एक भागहार बढ़ाना है, भागहार 1-1 बढ़ाना है एक्चुअली विशेषार्थ में। हाँ, वहाँ 1 ही है और यहाँ 1 प्रक्षेप 1 है, 1 में 1 बढ़ाएंगे तो कैसे होगा,
4 का 5 किया और 5 में 5 को 5 के पास किया ना,
क्योंकि 4 प्रक्षेप था और 4 भागहार था। तो 5 में तो वहां प्रक्षेप कहाँ बढ़ाया, प्रक्षेप में कहाँ बढ़ाया, प्रक्षेप पांच का थोड़ा ही था, इसलिए भागार में एक बढ़ाना चाहिए। पांच का छह किया, छह का सात किया, तो भागार में एक एक बढ़ाते हैं। और रूपाधिक भागार यही संख्या, ये कथन है रूपाधिक भागार की है, रूपाधिक प्रक्षेप की नहीं है। भागार लिखना चाहिए वो विशेषार्थ में, अंत में भी और ऊपर से चौथी लाइन में भी, चौथी लाइन ना, फिर इस प्रक्षेप में एक मिलाकर लिखा है, इस भागार में एक मिलाने पर। चौथी लाइन ऊपर से विशेषार्थ की चौथी लाइन, और फिर उदाहरण में भी एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नौवीं लाइन लास्ट एकदम राइट साइड। हाँ, फिर पूर्व भागार चार में चाहिए। उसके बदले पूर्व भागार चार में, ये तीन जगह वो प्रक्षेप के बदले भागार करना है। ये अभी रुकेंगे यहाँ पर। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवानी मस्तकनम सदा देत हूँ।